ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामिन्। इसको दोबारा बोलेंगे। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामिन् इति नामिने। नमा ओम विष्णुपादाय नप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंब रसांबोधे पादांबोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर अविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्ट सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमा महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकिशे नमः। नमो पात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यात् वृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविंद देवौ प्रेष्टालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षण वेणु स्वनैर्गोपीर् गोपीनाथ श्रियेस्तु नः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये रुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पुष्पाय भूतले श्रीमती राधानाथ स्वामी के नाम में गुरुदेव के पावन हरे कृष्णा। बहुत ही आनंद का दिन है आज, मुझे हृदय के स्तर पर उसको अनुभूति हो रही है, दिव्य आनंद के अनुभव की अनुभूति। आज श्रीमान ईश्वरपुरी महाराज का तिरुभाव दिवस है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। उनके जीवन का सारांश यह है कि उन्होंने अपने गुरु माधवेंद्रपुरी का बहुत ही निम्न सेवा किया था। उनका मलमूत्र निकालते थे वो रोज। माधवेंद्रपुरी वैकुंठ के कल्पवृक्ष के अवतार हैं और वो ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने राधा रानी के तत्व को इस विश्व में प्रकाशित किया सबसे पहले। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उस तत्व को विकसित किया और छह गोस्वामी ने पूर्णता प्रकाशित किया। तैसे हमारे संप्रदाय के बहुत ही क्रांतिकारी आचार्य रहे हैं माधवेंद्रपुरी जी, और उन्होंने श्री गोपाल जी को भी प्रकट किया है श्री वृंदावन धाम में, जो गोपाल जी आज नाथ द्वार में विराजमान हैं। तो ऐसे महान आचार्य की अंतिम, जैसे हमारे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एंड ऑफ लाइफ केयर, जिसको हम हॉस्पिस कहते हैं, उस प्रकार की सेवा उन्होंने उनकी अंतिम क्षणों में की, अंतिम दिनों में, अंतिम महीनों में की। और माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी जी को कहते भी थे कि आप मेरी इतनी निम्न सेवा क्यों कर रहे हो। ईश्वरपुरी कहते थे कि श्री गुरुदेव की सेवा ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, और गुरुदेव की सेवा है तो जीवन को जीवन कह सकते हैं, बाकी तो वैसे वो जिंदा होकर भी मुर्दा घूम रहे हैं, जीवत शव समान। इस प्रकार से अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ईश्वरपुरी जी ने माधवेंद्रपुरी जी की सेवा की। ये बहुत अनोखा उदाहरण है और ये भगवान की दिव्य योजना है कि आज उनके तिरुभाव दिवस पर हमारा ये दीक्षा का यज्ञ हो रहा है। दूसरा और एक उदाहरण मेरे सामने हमेशा आता है, वो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज का। नरोत्तम दास ठाकुर जी युवराज थे, उनके पिता राजा थे खेतुरी ग्राम में। उनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन देकर उनके हृदय में कृष्ण प्रेम स्थापित कर दिया और फिर आदेश दिया उसके बाद में कि आप वृंदावन चले जाओ और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के द्वारा दीक्षा ग्रहण करो। तो जब वो आए तभी लोकनाथ जी महाराज बड़े ही क्या कहते हैं उसको, भाव विभोर अवस्था में थे। उनको अपने शरीर का होश नहीं था, हमेशा दिव्य भाव में रहते थे, कृष्ण को पुकारते पुकारते वृंदावन के जंगलों में भटकते थे। तो जब मिले ये नरोत्तम जी, उनको मिले दीक्षा का अनुग्रह का विनती की, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको दीक्षा देने के योग्य नहीं हूँ, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि आपको दीक्षा दूँ और आपको शिक्षा दे दूँ। उसके बाद में कई बार रिजेक्ट किया उनको, फिर अभी क्या करें, दीक्षा तो नहीं दे रहे हैं। तो मन में तो उनको गुरु हमने स्वीकार कर लिया है, तो भी सेवा ढूंढनी है, तो सेवा ढूंढे कैसे? इतने विरक्त व्यक्ति है कि कोई सेवा ही नहीं है उनके लिए। हम जैसे लोग जो भोगी होते हैं वो बहुत सारी सेवा हमारे लिए उपलब्ध हो सकती है, लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे विरक्त व्यक्ति की क्या सेवा करें, कोई सेवा ही नहीं है। तो फिर उन्होंने सेवा ढूंढ लिया। सुबह के समय अंधेरे में उठकर लोकनाथ जी महाराज शौच करते थे जंगल में जाकर, और वहां पर जाकर नरोत्तम जी उनके पहले जाकर उस शौच को साफ करते थे और वहां मिट्टी के लोटा में पानी रख के छुप जाते थे, मतलब चले जाते थे। तो रोज ऐसे दिखाई पड़ता था। तो एक दिन लोकनाथ जी महाराज और जल्दी उठ गए और झाड़ी में छुप गए, और उनके शौच की जगह पर क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि नरोत्तम दास जी आंखों में आंसू लेकर अपने गुरु के शौच की जगह को साफ कर रहे हैं। तो लोकनाथ जी महाराज इतने भावविभोर हो जाते हैं कि उन पर पीछे से झपक पड़ते हैं, नरोत्तम नरोत्तम क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो, मत करो। नरोत्तम जी वो कहते हैं कि आप राजपुत्र हो, राजा होने के लायक हो, क्यों ऐसे मेरे जैसे पतित व्यक्ति की निम्न सेवा कर रहे हो। तो नरोत्तम जी कहते हैं कि राजपुत्र होने से क्या लाभ है, धन संपत्ति होने से क्या लाभ है, विद्या होने से क्या लाभ है, उच्च कुल का जन्म होने से क्या लाभ है, ये सब बेकार है। जब तक गुरु जी की अनुग्रह गुरु जी की कृपा नहीं प्राप्त होती है, सब कुछ बेकार है। तो उसी समय उसी जगह पर नरोत्तम दास जी को लोकनाथ जी महाराज ने दीक्षा दिया। वो जगह है खदीर वन, वृंदावन धाम में 12 वनों में से एक वन है खदीर वन, उसमें ये लीला हुई। लेकिन वो इतने भाव विभोर थे, आपको ना शांति रखना पड़ेगा पीछे, इतने भाव विभोर थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार तो किया है, लेकिन आपको मैं शिक्षा नहीं दे सकता, मैं उस अवस्था में नहीं हूं, आप वृंदावन जाइए और जीव गोस्वामी के द्वारा शिक्षा ग्रहण कीजिए। फिर वो वहां से गए और उन्होंने जीव गोस्वामी के मंदिर में आश्रय लिया है और शिक्षा ग्रहण की है। कहने का तात्पर्य यह है कि उच्च विद्या विभूषित होंगे हम, या उच्च कुल में हमारा जन्म हो गया होगा, या हम बहुत अमीर होंगे, धन संपत्ति से ऐश्वर्य संपन्न होंगे, या और सारे कई सारे गुण हैं, सौंदर्य हमारा होगा, बहुत बहुत प्रभाव होगा, पावर होगी हमारे पास, अधिकार होगा, बहुत अथॉरिटी होगी, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें गुरु के आश्रय के बिना बेकार हैं। एक शून्य छोटा है, दूसरा शून्य और थोड़ा बड़ा है, तीसरा और बड़ा है, और चौथा बहुत बड़ा है, लेकिन सब शून्य ही शून्य है। इनको सबको इकट्ठा करेंगे तो भी शून्य ही पैदा होगा। गुरु का अनुग्रह मनुष्य के जीवन में सर्वोच्च प्राप्ति है। अगर मनुष्य होकर कोई गुरु की प्राप्ति नहीं करता है तो उसका जीवन पूर्णतः व्यर्थ है। और उसमें भी कई प्रकार के गुरुओं का शास्त्र में वर्णन है। कुछ ऐसे गुरु होते हैं जो आपको कर्मकांड में लगा देते हैं, कुछ ऐसे गुरु होते हैं विरक्ति में लगा देते हैं, मोक्ष मार्ग में लगा देते हैं, लेकिन सद्गुरु जो आपको भगवान की भक्ति के परम लक्ष्य के मार्ग पर रखते हैं, ऐसे गुरु भी विरला होते हैं। तो हमारा यह परम सौभाग्य है कि हम गौड़ीय संप्रदाय में संलग्न हैं, और गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा ही ऐसी रही है। गौड़ीय संप्रदाय जो है वो क्रांतिकारी संप्रदाय बताया गया है। हमारे संप्रदाय के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु, जिनके नाम से गौड़ीय नाम पड़ा है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय, लेकिन गौड़ीय जो है प्रधान है। आजकल आप पूछेंगे संप्रदाय कौन सा, तो गौड़ीय तुरंत बताएंगे, ब्रह्म मध्व ऐसे बाद में बताएंगे समय मिलेगा। तो गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु का नाम का उसमें अंतर्भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया है वो क्रांतिकारी है। वो क्या कहते हैं, अश्लिष्वा पादरताम पिनष्टु माम, आप मुझे कुचल दो। बहुत कहना आसान है, कविता के रूप में डायलॉग मारना बहुत आसान है, लेकिन आप मुझे कुचल दो। आपकी इच्छा हो तो कुचल सकते हो, चाहे तो गले लगा सकते हो, या चाहे दूर ठुकरा सकते हो, या अपना बना सकते हो, या पराया कर सकते हो, भगा सकते हो, या रख सकते हो, पास बुलाओ दूर भगाओ, मैं सब विधि शरण तिहारी। ये बहुत क्रांतिकारी है। आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी आप समर्पित करने को तैयार हो अपने आप को। लेकिन जब ऐसे समर्पण होता है बिना किसी अपेक्षा के, तो कुछ नहीं मिलता है आपको। श्री कृष्ण केवल आपके हो जाते हैं बस, जो सभी सृष्टि के सभी अनुभूतियों के ज्ञान के साक्षात्कारों के हर प्रकार के चीजों के स्रोत है, उगम है, वो श्री कृष्ण हमारे हो जाते हैं, आपके हो जाते हैं। अपना रहा बोली, अपना बना लेते अपने को, हमको। इसलिए क्रांतिकारी संप्रदाय है, इसमें कोई फल वल का कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे परम श्रेष्ठ निरपेक्ष निस्वार्थ निस्पृह संप्रदाय में हम लोग जुड़े हुए हैं और हमारी दीक्षा हुई है। और इस संप्रदाय में जितने गुरु आचार्य हैं वो सब लोग शुद्ध भक्त हैं, भगवान के प्रेम में रत हैं। उनके एक एक इतिहास पढ़ेंगे तो भी आप दंग रह जाएंगे, ऐसे भगवान के प्रेम में उनका जीवन रत है। तो ऐसे संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद जी के शरण में हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के द्वारा हम सबको दीक्षा प्राप्त हुई है, ये हमारा परम भाग्य है। और दीक्षा तो प्राप्त हो गई, लोगों को लगता होगा कभी कभी कि हो गया हमारा अचीवमेंट, कुछ लोग 15 साल, कुछ लोग 12 साल, कुछ लोग 10 साल, कुछ लोग 8 साल, कुछ लोग 17 साल वेट करने के बाद में दीक्षा प्राप्त हुई, तो हमको लग सकता है कि हमारा लक्ष्य प्राप्ति हो गई। लेकिन मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि हमारी लक्ष्य प्राप्ति की ओर जाने का जो तरीका था या मार्ग था उसकी हम तैयारी कर रहे थे। अभी उस लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग की शुरुआत हुई है, अंत नहीं हुआ है। अभी हमको केवल इनिशिएशन मतलब अभी शुरुआत हुई है। अभी पूरे जीवन भर हमको अपने जीवन को गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करना है, तब जाकर हमारी दीक्षा जो आपकी जिस तारीख भी हो गई है वो दीक्षा सफल हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, यशस्वी हो जाएगी। मुझे एक कुछ बातें बताना बहुत ही आवश्यक लगता है, क्योंकि आज का जो यज्ञ है ये इस यज्ञ के माध्यम से हम अपने आप को परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और सारे आचार्यों की जो गुरु परंपरा है, इन सब लोगों को हम अपने जीवन को समर्पित करने जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म दिस यज्ञ टू ऑफर अवर लाइव्स इन फुल सरेंडर टू आवर गुरु महाराज, इसलिए ये आहुति आप अर्पण करेंगे। और एक बात बताना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग दीक्षा मिलने तक बहुत ही सिंसियर, गंभीर और सरेंडर रहते हैं, क्योंकि उनको दीक्षा प्राप्त करनी होती है, बहुत सिंसियरली करते हैं। लेकिन कुछ लोग दीक्षा देने के बाद में फिर शांत हो जाते हैं, धीरे धीरे ठंडे ठंडे हो जाते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो दीक्षा लेने के बाद में कुछ समय के बाद में 16 माला जब भी नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जब भी छोड़ चुके हैं और जब छोड़ के भी कुछ समय, कुछ साल बीत चुके हैं, भक्तों के संग से बहुत दूर जा चुके हैं, कहीं परदेश में हैं, पर गाँव में हैं और संपर्क नहीं रहा है, तो वो भी छोड़ देते हैं। हम सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा व्रत जो है 16 माला और 4 नियम वैष्णवों की सेवा, ये कुछ समय का व्रत नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का व्रत है। आज के बाद जन्म भी लेंगे तो अगले जन्म भी आपको वो व्रत करना है, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो जन्म जन्मांतर तो है ही। जन्म कहाँ होते हैं? भौतिक दुनिया में होते हैं। और जन्मांतर का मतलब क्या होता है? जब हम मुक्त हो जाएंगे, जब भगवान का धाम प्राप्त करेंगे, तो भगवान के धाम में भी हमारा और हमारे गुरुदेव का रिश्ता बना रहेगा। केवल भगवान के धाम तक पहुंचने के लिए ये वीजा नहीं दिया गया हमको, ये रिश्ता इतना चिरंतन है कि आज जो बना हुआ है आपका रिश्ता, वो आज से लेकर भगवत धाम में आपका जो चिरंतन जीवन है, शाश्वत जीवन है, परम जीवन है, उस सारे जीवन में भी गुरुजी आपके गुरुजी बने रहेंगे। चाहे वो किसी अलग रूप में रहेंगे, गोपी के रूप में रहेंगे या सखा के रूप में रहेंगे या गाय के रूप में रहेंगे, गौ माता के रूप में रहेंगे, जो भी उनका स्थायी भाव है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है, उसमें रहेंगे वो। आप भी अपने अपने दिव्य भाव में रहेंगे, दिव्य शरीर में रहेंगे, लेकिन आपका उनका संपर्क जो है बना रहेगा, वो दिव्य रूप से आपका संपर्क बना रहेगा, आप उनको पहचान पाएंगे, उनके आदेश में ही आपका गौलोक धाम का जीवन भी उनके आदेश में चलेगा। तो ये सब बताने का पर्पज क्या है कि आपका ये चिरंतन नाता है, कुछ समय का नाता नहीं है। तो उसी को अगर आपको बनाए रखना है, उस नाते को, उस नाते की दिव्यता को बनाए रखना है, तो आपको आज से जीवन के आखिरी क्षण तक ये व्रत जो है वो धारण करना होगा। और अगर हम त्याग करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि अगर हम त्याग करते हैं व्रत को, तो हमारे गुरु जी को अपने कर्मों का बुरा फल भोगना पड़ेगा। जैसे बिल्व मंगल ठाकुर को, उनके गुरु जी को उनके लिए वेश्या बनकर आना पड़ा, तो हमारी ऐसी इच्छा नहीं कि हमारे गुरु को हमारे लिए ऐसे स्वरूप में आना पड़े। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमें ऐसा प्रयास करना है इस जीवन में कि इसी जीवन में हम भगवत धाम गुरु जी की आज्ञा में सेवा में चले जाएं, ताकि उनको हमारे लिए बार बार इस दुख भरे भौतिक जीवन में वैसा ही शरीर धारण करके बार बार आकर हमारे कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह हम सबको निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय करना है। ये मार्ग जो है वन वे है, टू वे नहीं है, वापस आने का मार्ग नहीं है। आप लोग ने रिक्शा ले लिया है, अभी आपका मार्ग केवल भगवान की धाम की ओर है, गुरु जी की चरणों की ओर है, उनकी सेवा के माध्यम में है। तो निश्चय कर लीजिए कि हमको जीवन के अंत तक करना है। अगर आप बेहोश हो जाएंगे, कभी कोमा में जाएंगे, तो कोमा में जितनी माला रह गई वो आपको कोमा में आने के बाद में पूरा करना पड़ेगा। ये भी बता रहा हूँ आपको मैं, तो हो सकता है कोई अपघात होगा किसी का दुर्भाग्य से, इतने दिन आपके नष्ट हो जाएंगे कोमा के अंदर, वो सारे मालाओं को आपको कोमा के बाहर आने के बाद पूरा करना है। इतना ही गंभीर व्रत है, समझ लीजिए आप उसको, गंभीरता को। क्योंकि हम हमारे लिए किसी एक व्यक्ति ने, वो हमारे पारिवारिक रिश्तेदार नहीं है, ना हमारे भाई है, ना बहन है, या चाचा है, ना मामा है, ना दादाजी है, नाना जी है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है वो। फिर भी ऐसे व्यक्ति ने हमारे जन्म जन्मांतर के पीछे वाले सारे कर्म ले लिए हैं, और वो भुगतने वाले हैं सब हमारे जो कर्म हैं, जो बोझ हमारे ऊपर उन्होंने स्वीकार किया है, और उसको लेकर वो चलेंगे, उसको लेकर वो कष्ट भोगेंगे, और हम वो बोझ से हल्का होकर भागेंगे। भागने के लिए दिया है वो दीक्षा, भागने के लिए वो बोझा उन्होंने उठा लिया है। लेकिन जिस व्यक्ति हमारा बोझा अगर उन्होंने उठा लिया है, तो कितना हमको ऋणी होना चाहिए, कितना कृतज्ञ होना चाहिए उनके लिए। माँ बाप भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, माँ बाप का रिश्ता भी इसी जन्म के अंत तक खत्म हो जाता है। अगर वो गुजर गए तो खत्म, अगर हम गुजर गए तो भी खत्म। एक जन्म का रिश्ता है, सर्वोच्च रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन वो भी एक जन्म का है। लेकिन गुरु शिष्य का रिश्ता जो है वो जन्म जन्मांतर का है। आप हम और हम कुछ भी करेंगे ना, कुछ भी करेंगे, फिर भी गुरु जी का ऋण जो है हम चुका नहीं सकते। कितना भी कुछ करेंगे, समर्पण करेंगे, अपने आप को मिटा देंगे, हाँ का ना कर देंगे अपने अस्तित्व को, फिर भी हम अपने गुरु जी का ऋण जो है वो चुका नहीं सकते। तो क्या करना है हमारे लिए, फिर करना एक ही है, गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरियाए का, जो भी गुरु जी की आज्ञा है उसको 100% भाव से हृदय के हमको फॉलो करना है। गुरु जी क्या चाहते हैं, गुरु जी चाहते हैं कि हम सब जीवों के प्रति समभाव रखें, आप प्रभाव न रखें कि ये मेरा मित्र है, मेरा शत्रु है, ये मेरा हित चिंतक है, ये मेरा अवैरी है, ये भाव रखना नहीं है। और खास करके गुरु भाई और गुरु बहनों की तरफ बहुत प्रेम से व्यवहार रखना है, उसमें कलह झगड़े वो सब बातें नहीं होनी चाहिए। और सब लोगों को कृष्ण की भेंट देने के लिए हमको उत्सुक होना चाहिए, हमारे अस्तित्व से हमारे गुरु जी के लिए गौरव बढ़ना चाहिए, हमारे अस्तित्व से सब जीवों को लाभ होना चाहिए। जहाँ जहाँ भी हम खड़े होंगे, बैठे होंगे, हमारे केवल होने से ही अन्य जीवों को लाभ होना चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात, हम सबको एक आदर्श आइडियल भक्त बनना चाहिए, आदर्श वैष्णव बनना चाहिए, जिससे गुरु का गौरव बढ़े। क्या कहते ना, हमारे लिए वजह से गुरु को शेम या लज्जा नहीं आनी चाहिए कि ये मेरा शिष्य है, इतना गलत व्यवहार कर रहा है, मेरे लिए एक बोझ है ये शिष्य। ऐसा होने के बदले में हम सब लोग गुरु के लिए एक गौरव बने, जब भी हमारा नाम लिया जाए तो गुरु का गौरव बढ़ना चाहिए, इस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए। तो ये सब हमको बार बार संकल्प करना है, बार बार एक दूसरों को याद दिलानी है कि हम किस लिए यहाँ पर है। कभी भूल जाएंगे, चूक जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो दूसरों को आपको धक्का देना है, पुश देना है प्रेम से, ताकि हमारे गुरु जी को कष्ट ना हो, क्योंकि जो भी हम करेंगे उसका कष्ट गुरु जी को भोगना पड़ेगा। रोज हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, जिससे एक बार दीक्षा के दिन पे गुरु जी ने सब सारे कर्म हमारे हटा लिए हैं, ऑल बैकलॉग फिनिश्ड डिलीटेड। लेकिन रोज हमारे तरफ से नए नए कर्म होंगे, हम सांस लेंगे तो जीव जंतु मर जाएंगे, पानी उबालेंगे तो जीव जंतु मर जाएंगे, हम भोजन बनाएंगे तो जीव जंतु मर जाएंगे, चलेंगे रास्ते पर तो कदम पर कितने सारे अनदेखे जीव मर जाएंगे, ऐसे तो बहुत सारे अपराध होते रहते हैं। लेकिन रोज सवेरे जप करके कल अपने जो नया अकाउंट बनाया है उसको डिलीट करना है आपको, और रोज करना है, वो जीवन के अंत तक करना है, आखिरी दिन तक करना है, ताकि आखिरी दिन में सारा अकाउंट डिलीट हो जाए और आखिरी नाम जो लेंगे उससे आप भगवत धाम चले जाएं। इस बीच में एक बाधा है, वो है अपराधों की। केवल रोज अटेंटिव जप करके अपना अकाउंट रोज का नील नहीं करना है, साथ साथ में अपराधों से बचना है, क्योंकि वो अलग आइटम है, एक टोटल डिफरेंट आइटम है। वो अपराध करने से हमारे आध्यात्मिक प्रगति नष्ट हो जाती है, नाम का प्रभाव रुचि नष्ट हो जाती है, और अपराध का परिणाम गुरु जी को भोगना पड़ता है, ये बहुत भयंकर चीज है। मैं यहां अपराध कर रहा हूं, कोई व्यक्ति वहां पर दुख भोग रहा है। प्रभुपाद जी भी दीक्षा देने के बाद बहुत बीमार पड़ते थे, हमारे गुरुदेव भी दीक्षा देने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? जयपताका महाराज भी अभी ओपनली बोल रहे हैं कि मुझे जो भी कष्ट हो रहा है हुआ था, वो सब मेरे पापों का फल नहीं है, मेरे शिष्यों के अपराधों का, उनके इनसिंसियरिटी का फल है। बार बार ओपनली कह रहे हैं, उनके सब व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि मैं जो भी कष्ट भोग रहा हूं वो मेरे शिष्यों के अपराधों के वजह से और शिष्यों के व्रत में ढीला होने के वजह से मुझे ये अपराध के वजह से दुख भोगना पड़ रहा है। उससे काफी शिष्य लोग जो भटक चुके थे वो गंभीर हो गए हैं। तो हमें वो इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो जब होगा हमारी लाइफ में तब हम लोग सुधर जाएंगे, उससे बचाना है हमारे गुरुदेव को, और वो केवल हमारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। अपराध करना या ना करना हमारे हाथ में है। सिंसियरली व्रतस्थ होकर जप करना, रोज का नियम पालन करना, साधना करना, ये भी हमारे हाथ में है, वो किसी को हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। तो मैं आपको विनती करता हूं कि जैसे हम पर करुणा के माध्यम से, हम पर करुणा करके गुरु जी ने हमारे सारे कर्म स्वीकार करके हमको अपना लिया है, जिम्मेदारी ली है हमारी कि हमें भगवत धाम में पहुंचाना है, ये जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की गुरु जी ने ली है। तो कम से कम हमने ये व्रत लेना है कि हम गुरुदेव को और बोझ नहीं डालेंगे, गुरुदेव को और कष्ट नहीं देंगे, हमारी वजह से उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये केवल आज नहीं, जीवन के अंत तक आपका चिंतन होना चाहिए कि मेरी वजह से गुरु जी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और गुरु जी जो कहते हैं, शायद किसी को, हर व्यक्ति को 1-to-1 आज्ञा नहीं मिलेगी, शायद उन्होंने साफ साफ कहा है कि शायद मैं आगे नहीं मिलूंगा कभी आपको, कभी आपके घर पर नहीं आ सकूंगा, हो सकता है, लेकिन मेरे प्रवचनों में, गुरु जी कहते हैं, मेरे प्रवचनों में मैं मेरे शिष्यों के लिए पर्सनल इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत आज्ञा देते रहता हूं, उसका पालन करो, आप उनकी कथाएं सुनो, जहां पे कथा दे रहे हैं, जहां पर वो यात्रा देते हैं, उन्होंने बोला है मेरी यात्रा में सब शिष्यगण आना चाहिए, क्योंकि वहां पर मैं मेरे शिष्यों के लिए व्यक्तिगत समय देता हूं मेरे प्रवचनों के माध्यम से। ये उनके जाहिर ऑर्डर्स हैं, ओपन इंस्ट्रक्शंस, तो हम लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। अगर हम उनके शिष्य कहलाते हैं तो उनके आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु है, और उनकी आज्ञाओं की अवज्ञा करना बहुत ही घाटे का सौदा है और नुकसानकारक काम है। गुरु की अवज्ञा सारे आध्यात्मिक प्रगतियों को नष्ट करने की एक ही वस्तु है, गुरु की अवज्ञा, और आध्यात्मिक उन्नति को 100 गुना 1000 गुना बढ़ाने का मार्ग है गुरु की आज्ञा का पालन। तो आइए आज इस ईश्वरपुरी महाराज के तिरुभाव दिवस के शुभ अवसर पर गुरु महाराज के सान्निध्य में, श्रील प्रभुपाद जी के सान्निध्य में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई, सुदर्शन चक्र, नरसिंह भगवान, राधा माधव जी मायापुर के, इन सबके पावन सान्निध्य में, आपके रिश्तेदारों के सान्निध्य में, वैष्णवों के सान्निध्य में, मैं सबके लिए आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन के इस दिव्य व्रत को पालन करने में सफल हो जाएं, और आप सब गुरु के गौरव बने। आपकी तरफ से ऐसा कोई कार्य न हो जिससे गुरु को कष्ट हो, वैष्णवों को कष्ट हो, ये मैं आपके लिए हृदय से शुभकामना करता हूँ, हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसमें यशस्वी हो और इसी जीवन में आपके जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण हो, संपन्न हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।